الثقيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمة الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بيت محمد عليه. پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو خلق نہیں کیا مگر سوائے عبادت کے. عبادت جو ہے وہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ مہم اور اہم اور اصل ہدف خلقت جو ہے وہ عبادت ہے. عبادت کی مختلف تعریفیں، عبادت بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مگر عبادت اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے. انسان کا پورا وجود جب اپنے معبود کے سامنے حاضر ہو جائے تو وہیں پر سمجھ لیں کہ وہ ہر حال میں پروردگار کی عبادت کر رہا ہے. اور اگر اسی معبود کے پیکر معبود کے سامنے، یعنی ایک ایسا پیکر، ایک ایسی ہستی، ایک ایسی ذات دیکھنی ہو کہ جو خالص عبد ہو، جو کامل عبد ہو، تو وہ سوائے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی اور نہیں ہے. درود بھیجے محمد والے. بہرحال یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر پہلو کے اندر یہ ثابت کیا کہ چاہے جنگ ہو، چاہے گھر ہو، چاہے محراب ہو، چاہے جو ہے وہ کسی کی مدد کرنی ہو، چاہے زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، وہاں پر ہر حالت کے اندر عبودیت کو دکھایا ہے کہ اپنی خواہشات نہیں ہیں، اپنے معاملات نہیں ہیں، اپنا ہدف نہیں ہے، صرف اور صرف مرضی خدا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کی جو ہے وہ 300 سے زیادہ آیتیں ہیں جو ہیں وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان کے اندر نازل ہوئی ہیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو ہے جب ہم انسان یہ دیکھتا ہے کہ جب ایسے بندے کو دیکھتا ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے. کیونکہ ظاہر ہے انسان کو اپنی زندگی کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد اور تعین کرنا پڑے گا کہ اس کی زندگی کا ہدف کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اور جب تک اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہے تو وہ سفر طے نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر آپ نے اگر یہاں سے کہیں جانا ہے تو آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی منزل ہونی چاہیے، کوئی نہ کوئی مقصد، ورنہ آپ گھر کے باہر نکل کر ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے تو لوگ آپ سے ہی بولیں گے کہاں جانا ہے، آپ بولیں گے کہ مجھے خود نہیں پتہ، تو لوگ یہی بولیں گے شاید ہو سکتا ہے دماغی توازن درست نہیں ہے، یا بہرحال انسان جو ہے وہ مشکل میں ہے. آج کل ویسے بھی حالات انسان کے ایسے ہیں پاکستان کے اور ہمارے اپنے معاملات، تو وہاں پر انسان پریشان ہے، سرگرداں ہیں. لیکن اگر انسان کی زندگی میں مقصد ہے تو لگتا ہے ہاں یہ انسان بڑا بہادف ہے، صبح اپنے کام سے نکلتا ہے، اپنے کام پر جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی بڑی بہادف اور بڑی پریکٹیکل لائف جو ہے وہ اصولوں پر مبنی اس کی زندگی گزارتا ہے. اب اگر یہی زندگی میں، اگر یہ تو چھوٹی سی زندگی ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، گھر ہے، انسان کی اولاد ہے، لیکن اگر یہی زندگی کو انسان اگر اپنے آپ کو نگاہ کرے کہ وہ ایک وجود ہے، وہ ایک ایسا وجود ہے جس کا اس خلقت کے اندر حصہ ہے، اور اس وجود کو کس طرف بڑھنا ہے، اس وجود کو کہاں لے کر جانا ہے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ انگلستان میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہے، جب ایک وجود پروردگار نے خلق کیا تو اس وجود کو بھی ایک مقصد کی طرف بڑھنا ہے. اب اس مقصد کا تعین کون کرے گا، اور میں اس دنیا کے اندر جو آیا ہوں عالم مادہ میں، میں کس کو دیکھوں جو میرے مقصد کو تعین کر سکے، یا جس کو دیکھ کر میرا خود بخود مقصد تعین ہو جائے، میرا ایک ہدف میرے اوپر واضح ہو جائے. تو وہ سوائے ان ہستیوں کے جو انسان کامل ہیں، اگر یہ نہ ہو تو انسان اپنی اس دنیا کے اندر سرگرداں ہے کہ وہ کہاں جائے گا، وہ کس مکتب کو مانے، وہ کس مذہب کو مانے، اس کو ہمیشہ ہر جگہ جو ہے وہ سوالیہ نشانی نظر آتا ہے. ہر جگہ وہ پریشان نظر آتا ہے، چاہے وہ صدر اسلام کے اندر دیکھ لے یا اس سے پہلے کے مذاہب کے اندر دیکھ لے، کوئی ایسی شخصیت اسے نظر نہیں آتی ہے. یہی وجہ ہے، دیکھیں یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی دوسرے مذاہب اور مکتب کے لوگ ہیں، جب انہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے تو انہیں سوائے امام علی کے کوئی اور ہستی با ہدف نظر آ ہی نہیں ہے. خوب یہ خامخواہ نہیں ہے کہ مثلا کوئی ہم خدا نہ خواستہ ہم نے پیسے دیے کسی کو کہ یار امام علی کی تعریفیں بیان کریں. نہیں، آپ تعریف کیوں دیکھیں، چاہے وہ جو ہیں وہ فرقے اسلام کے اندر کیوں، چاہے وہ مکاتب جو ہیں وہ اسلام سے باہر کیوں ہوں، بھائی اور کیوں نہیں کسی کی تعریف کی، اور کیوں نہیں کوئی نظر آتا. حواریوں میں سے حضرت عیسیٰ کے بھی حواری تھے، حضرت موسیٰ کے بھی تھے، خوب ان کی کیوں نہیں تعریف لکھ پا رہا کوئی. اصحاب رسول خدا اور بھی تھے، یہ نہیں کہتے خدا نخواستہ جو ہے وہ اصحاب کی جو ہے وہ اہمیت نہیں، اصحاب کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، مگر یہ معاملہ بشری نہیں ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ الہی ہے. یہاں پر جو فرد ہے اس کا تعین جو ہے وہ لوگوں نے نہیں کیا ہوا، اس کو پروردگار نے انتخاب کیا ہے، اور پروردگار نے اس وجود کے اندر ان چیزوں کو جلوہ دیا ہے کہ وہ چاہے تاریخ جتنی بھی آگے پیچھے ہو جائے، سوائے ان شخصیتوں کے کوئی اور چیز نظر آتی ہی نہیں ہے. خوب یہ کمال ہے ان ہستیوں کا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کر کر دکھایا ہے. اب یہ تو بہرحال ان کا کمال ہے، انہوں نے کیا. اب اس کمال کا اثر میری ذات پہ کتنا ہے؟ دیکھیں میں اصل میں جو ہمارا مسئلہ ہے ان ہستیوں کا ذکر کر کے، وہ یہ ہے کہ میں پریشان ہوں، میں خود سرگرداں ہوں، مجھے اپنا راستہ ڈھونڈنا ہے، تو مجھے ان ہستیوں کو کس طرح فالو کرنا ہے، کس طرح ان کی اطاعت کرنی ہے، یہ میرے لیے مہم ہے. بھائی میں تعریف کرتا رہوں مولا کی، مولا کی میں تعریف کروں یا نہ کروں، مولا کی ذات میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، لیکن میں کیوں تعریف کرتا ہوں مولا کی؟ کیونکہ میں اپنے حقیر سے وجود کو ان کے وجود کے قریب کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہوں کہ شاید کہیں میں بھی تاریخ کے اندر، شاید کہیں روزے محشر میں میں بھی کہیں نظر آ جاؤں. آج کی شب شب شہادت ہے مولا کائنات، اور شب قدر کی تاک راتوں میں سے دوسری رات ہے، مہم رات ہے شب قدر کی، جو 19ویں رات ہے. روایتوں کی روشنی میں 19ویں رات کو جو انسان مانگتا ہے ساری چیزیں، رزق مانگتا ہے، اور رزق کا تعین ہوتا ہے اس کی مقدار کا، اس کی وسعت کا، اس کے جس نے حج پہ جانا ہے نہیں جانا، سارے جو معاملات ہیں وہ 19ویں شب کے اندر طے ہوتے ہیں، مقدار ان کی معین ہوتی ہے. اور 21ویں شب تک یہ جو وقت ہوتا ہے یہ اس کے اندر تبدیلی کے لائق ہے، یعنی جو اس دن ہے اگر کہیں کمی بیشی ہو گئی ہے تو آج جو ہے وہ آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی اور غلط عمل کیا تو جو ملا اس کو گھٹا بھی سکتے ہیں. اب یہ کہ آج کی رات آپ نے اگر ان ساری چیزوں کو جو مانگا ہے اور اگر کم ہے تو آج آپ کی بڑھ سکتی ہیں، اور آج آپ اس کو اوپر یعنی اس کو ٹھوس طریقے سے ثابت کروا سکتے ہیں. اسی طرح 23 کی شب جب آئے گی تو یہ ساری چیزیں جو قاطعیت ہو جائیں گی، یعنی ان کے اوپر سٹیمپ لگ جائے گی کہ بھائی یہ جو 19 میں اس نے مانگا اس کو ملا، 21 میں بھی اس نے وہی کیا، اب 23ویں کی شب کو جو ہے وہ اس کو مہر لگ گئی ہے، اب یہی اس کو اس شب قدر میں ملنا ہے. اب یہاں پر بہت خوبصورت جملہ آیت اللہ جوادی عاملی لکھتے ہیں، آیت اللہ جوادی عاملی لکھتے ہیں کہ انسان نے عبادت کی، شب میں عبادت کی، اور عبادت کے بعد عبادت کا جو دسترخوان لگایا نا، یہ جب دسترخوان لپیٹا جاتا ہے، اس دسترخوان کے لپیٹنے سے جو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان کو جہنم کی آگ سے نجات مل جاتی ہے، انسان جو ہے وہ جنت میں چلا جائے گا. یہ وہ ہے جو اس دسترخوان سے لپیٹا ہوا بچا ہوتا ہے. اور ہم کیا ہے، ہم اصل یہی مانگ رہے ہیں کہ پروردگار جہنم کی آگ سے بچا لے، پروردگار جنت میں دے دے. وہ کہتے ہیں یہ تو اس دسترخوان سے جو گرتا ہے یہ وہ ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کھانا کھاتے ہیں اور دسترخوان لپیٹتے ہیں، آپ نے جو جس نے صحیح کھانا تھا اس دسترخوان پہ کھا لیا، لیکن اب جو اس میں سے تھوڑا تھوڑا جو ٹکڑا ٹکڑا گرا ہے وہ کون کھاتا ہے؟ وہ یہ دوسرے جانور کھاتے ہیں، یہ چونٹیاں کھاتی ہیں، اصل تو دسترخوان پہ آپ کھا کے اٹھ گئے. تو وہ کہتے ہیں یہ جو تم مانگ رہے ہو جہنم کی آگ سے نجات مل جائے اور جنت میں جگہ مل جائے، یہ تو وہ ہے جو دسترخوان سے قطرہ قطرہ گرے گا، یہ تو وہ ہے. اصل کیا ہے؟ کہتے ہیں اصل یہ ہے کہ تم آج کی رات اپنے آپ کو وہ نور مانگو جو روزے محشر ہزار لوگوں کو بہشت لے کے جائے گا. یعنی دیدگاہ بدل دی، یعنی انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کن چکروں میں لگا ہوا ہوں، اور میں کیا کر سکتا ہوں، میں کتنا باظرفیت ہوں، कितना परवरदिगार ने मेरे वजूद के अंदर ताकत रखी हुई है। तो यहाँ पर यही मसाइल हैं कि जब इन हस्तियों का जिक्र करें तो आप इनके पास आने की कोशिश करें। मैं इनके पास आने की कोशिश करूँ, मैं कायनात का इमाम है, मौलाए कायनात है, फजाइल आपके सामने जो हैं वो कोई छुपे हुए नहीं हैं। एक रात को लोगों ने कहा या रसूल इमाम अली से, मौलाए कूफा के अंदर, मौला जो आपको रसूल खुदा ने दिया है कुछ हमें भी दिखा दीजिए। तो रसूल इमाम अली कहते हैं कि अगर मैंने तुम्हें दिखा दिया तो तुम कुफ्र और शिर्क कर बैठोगे। कहा नहीं नहीं, खैर 70-72 लोग इमाम के साथ निकलते हैं कूफा की मस्जिद से, कूफा से बाहर निकलते हैं। तो मौला कहते हैं देख लो, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये ना हो फिर तुम गलत कुछ समझने लगे। मगर नहीं नहीं कुछ नहीं करेंगे। तो मौला ने एकदम कहा कि अपने आप को पलटाओ। सब ने पलटाया तो देखा एक तरफ जो है वो बहुत ही खूबसूरत बाग है और दूसरी तरफ जहन्नुम की तरह एक आतिश लगी हुई है। तो एकदम कुछ लोगों ने कहा कि ये तो हम माँ बहने जन्नत और जहन्नुम खड़े हुए हैं। और एकदम मगर उसमें से अक्सरियत ने बोला नहीं नहीं ये सहर है, ये जादू है। यानी वहीं मुशरिक होकर जो है वो पलट गए। कुछ लोग, दो तीन लोग बचे, उनको मौला ने बोला कि चलो मैं आगे चलता। आगे चलते कूफा की मस्जिद को इमाम ने इशारा किया तो वो दुर और याकूतों में जो है उसके सुतून और दरवाजे बदल दिए। तो वहाँ पर एक शख्स फिर भी कहने लगा कि नहीं नहीं मौला ये तो शहर लगता है, तो वो भी पलट गया। मगर एक सही रह गया, बच गया। तो मौला ने कहा कि जो इन दोनों को निकालेगा वो भी और जो ना भी निकालेगा दोनों जो है वो जन्नत में जाएंगे। अब वो बड़ा परेशान, उसने मौका देखा, उसने देखा एक दुर जो है वो निकाल के रख लिया। और फिर जब दोबारा आया मौला खिदमत में तो इतना सफ़ेद उसके अंदर, ऐसी सफ़ेदी थी। तो कहा कि मौला कहता है मौला इतनी सफ़ेदी थी मैं क्या करता, मैंने उसको निकाल। मौला ने कहा अगर तुम चाहते हो जन्नत में जाना तो इसको जाओ वापस जाकर रख दो। तो जाकर उसने वापस जाकर रखा तो उसको बहिश्त जो है वो फिर मौला ने दोबारा उसको पत्थर के अंदर तब्दील कर लिया। खूब ये हम फजाइल जिक्र करते हैं, ये फजाइल मौला के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मिकदाद कहते हैं कि एक दफ़ा मैंने मौला को देखा, मौला मेरे पास आया, मौला ने कहा कि जाओ मेरी जो है वो तलवार शमशीर लेकर आओ। कहा मौला ने रखी, मौला ने अपने जानू पर अपनी जुल्फिकार को रखा और अचानक से मैंने देखा मौला आसमानों पर परवास करके चले गए। और मैं देखता ही रहेगा कि अचानक से मौला मेरी नज़रों से ओझल हो गए। थोड़ी देर के बाद मौला वापस आए तो मैंने कहा मौला ये क्या था। कहा कि अर्श के अंदर कुछ मखलूकात के मसाइल थे, वो मान नहीं रहे थे, तो मुझे जाके उनके मामले को हल करना पड़ गया। तो मौला ने कहा कि मुग्धा मौला कि ये अर्श के मामलात भी आप ही हल करते हैं। कहता हाँ ये सारे मामलात, क्योंकि मैं कायनात का इमाम हूँ। तो हम किस तरह इस कायनात के इमाम को मानते हैं, हम क्या मानते हैं? तो समझते हैं हम खुदा ना खास्ता हम दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं यार ये रसूल को कहते हैं हमारे जैसे, तो हम मौला भी हमारे। ये जो हमारी बातें हैं ना अली नाउज़ुबिल्लाह, ये सब हवाई हैं हमारे, हमारे अंदर नहीं उतरा हुआ कुछ। अगर अंदर उतरा हुआ होता तो हमारे वजूद के अंदर एहसास हो रहा होता कि हम कुछ और हैं, हमने कायनात को उखाड़ फेंका होता अगर हमारे अंदर ये विलायत उतर चुकी होती। तो सिर्फ हमारी बातें ड्राइंग रूम की हद तक, गली कूचों के कोने पर, मस्जिदों के मेम्बरों पर, उसके अलावा हमने इमाम अली को कुछ नहीं है। तो हमारा अपना कारोबार है जो हमने चला रहे हैं। वरना जिन्होंने विलायत को अपने सीनों में उतारा है, आज आप देख लें वही हैं कि जिन्होंने दुश्मन को ललकारा हुआ है। दुश्मन खौफ खाता है उन जवानों से जिनके सीनों में विलायत अली इब्ने अबी तालिब है, उनके सीनों में है, उनके सीनों से कोई नहीं निकाल सकता। और आज देखें दुनिया कितनी टेक्नोलॉजी, आज देखें ऐसा रडार सिस्टम अभी कल जो है वो डिप्लॉय किया ईरान के अंदर कि जो 1140 किलोमीटर दूर प्लास्टिक मिसाइल हो उसको पकड़ लेगा। 1140 किलोमीटर दूर 600 किलोमीटर फाइटर जेट आ रहा हो इनको पहले पता चल जाएगा। ऐसा सिस्टम बना दिया है। कहाँ से बनाया है? विलायत वजूद में सराइयत कर गई है। वो सलूनी सलूनी जो मौला ने कहा था कि मांगो पूछो मुझसे, मैं दुनिया से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूँ, वो ये जवान इमाम से आज भी ले रहे हैं। क्योंकि अपने वजूद को वैसा कर दिया है जैसा ताबे करने का हक है। भाई बंदे खुदा को कमाल पर देखने का मकसद ये था कि हम अपने वजूद को बंदगी की तरफ लेकर आए। अगर मेरा वजूद इस इंसान कामिल के वजूद को देखते हुए बंदगी की तरफ नहीं बढ़ा, मेरी ज़िंदगी का मकसद है ये ज़ात, हदफ है मेरी ज़िंदगी को। मैं जो इस दुनिया के अंदर जुल्मत के अंदर अंधेरा है क्यों, ये मैं खुद नहीं कह रहा, रसूल खुदा ने कहा कि हक़ुन माल अली व अलीयुन माल हक। कि तुम जब भी हज़रत अमार के लिए, हज़रत अमार जो असहाबी हैं और बहुत बुज़ुर्ग भी हैं और बाबसीरत हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह आपके जाने के बाद मैं देख रहा हूँ कि फितना बरपा होगा, मैं क्या करूँ। تو ایسے میں دیکھا کہ مولا کائنات آ رہے ہیں, تو رسول خدا نے کہا کہ دیکھو عمار, چاہے پوری دنیا ایک وادی کے اندر جمع ہو جائے, پوری دنیا کے لوگ, اور علی ایک وادی میں کھڑا ہو, تو علی کی طرف جانا. کیوں؟ کیونکہ حق مال علی و علی مال حق. یعنی واضح کر دیا ہے مقصد حیات کا, یعنی شش و پنج نہیں ہے, دین کا معاملہ ہے, الہی معاملہ ہے کہ یہاں چلے جانا. اسی لیے حضرت عمار کے لیے بھی یہ روایت ہے کہ حق مال عمار و عمار المال حق. یہ حضرت عمار کے لیے بھی روایت ہے. کیوں؟ کیونکہ عمار بغیر حق کے کہیں جا ہی نہیں سکتا تھا. اب وہ الگ ہے کہ اس آیت اس حدیث کا ایک اور حصہ ہے وہ مولا کائنات کے ساتھ ہے کہ جہاں جہاں علی جاتا ہے وہاں وہاں حق مڑ جاتا ہے. حق جو ہے وہ پیروکار ہے, وجود پورا پیکر ہے, وجود جو ہے وہ ایسا عبد ہو, انسان کامل ہو, تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا. ہماری زندگی میں تاریکی ہے, ہم گمراہ ہیں, ہم غفلت کے اندر ہیں, ہمیں کون دے گا راستہ؟ یہی راستہ دے گا, یہی یا علی مدد بچاتا ہے, یہی یا علی مدد. لیکن شرط یہ ہے کہ میں اپنے اندر ظرفیت پیدا کروں کہ میں اس وجود کو اپنے وجود میں سما پاؤں. یہ جوان انہی میں سے ایک اور لڑکا ہے, 24-25 سال ہے, اور عراق ایران کی جو جنگ ہے اس کے اندر جو سپاہ علی جبن ابی طالب ہے, یعنی نام بھی سپاہ کا جو یونٹ ہے اتنا سٹرونگ ہے کہ علی جبن ابی طالب کی جو فوج ہے اس کا لشکر کا جو ہیڈ ہے وہ یہ لڑکا ہے. اس کا نام ہے شہید مہدی زین الدین. ٹھیک ہے, ابھی 24-25 سال کا لڑکا ہے. آپ اسے تربیت, اسے اخلاص کہتے ہیں. محرم کے ایام ہیں, اس کے یہاں ولادت ہوتی ہے اور یہ جنگ پر ہے. تو یہ اس کے گھر والے پوچھتے ہیں نام کیا رکھیں, بیٹی پیدا ہوتی ہے, تو اس نے دیکھا کہ ایام کربلا ہے, ایام عزا ہے, تو ام لیلہ رکھنا چاہیے نام. نام اس نے لیلہ, ام لیلہ رکھا. تھوڑے دن گزرتے ہیں تو اسی کا ایک دوست کہتا ہے کہ اس کے جیب میں کچھ انویلپ ہوتا ہے, تو کہتا ہے فرمان دے, لشکر کا جو ہیڈ ہے جنرل, کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ جنرل کی بیٹی کی تصویر جو ہے وہ آئی ہے, تو میں بھی تو دیکھوں کہ جنرل کی بیٹی کیسی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے خود ابھی تک نہیں دیکھی ہے. کہتا ہے یہ کیسی بات ہے, تصویر آپ کی بیٹی کی آئی اور آپ نے نہیں دیکھی ہے؟ کہتا ہے ابھی کیونکہ میں درمیان آپریشن کے ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی بیٹی کی تصویر دیکھوں اور ذرا برابر بھی بیٹی کی محبت میرے کام میں مداخلت کرے, کیونکہ میں خدا کے لیے کام کر رہا ہوں. یہ اخلاص, یہ بنائے ہیں مولا کائنات نے 1400 سال بعد بھی. وہ تو جو ساتھ تھے تو ساتھ تھے, ان کو تو ہم کیا کہیں جو ساتھ تھے, وہ تو ساتھ تھے. سلمان, بوزر, قمبر, مقدا, وہ تو ساتھ تھے, میسم نے تمار. لیکن اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی ایسے لوگ بنائے ہیں اور بنائے جا رہا ہے, بنائے جا رہا ہے, کیونکہ جو صحیح طرح جڑتا ہے یہ اس کو کہیں اور لے جاتے ہیں, کہیں اور لے جاتے ہیں. وہ پھر کسی اور وادیوں میں رہتا ہے, اس کو پھر خوف نہیں ہے, اس کو کوئی خوف نہیں ہے کہ میری جان چلی جائے گی, میرا چلا جائے گا. نہیں نہیں, بل وہ بالکل ویسے ہی ہے. یہی وجہ ہے جب امام خمینی آ رہے تھے فرانس سے, جہاز مطلب جہاز کے اندر بم ہے, پھٹ جائے گا کچھ وغیرہ, مجھے جتنی سکون کی نیند اس پرواز میں آئی ہے میں نے زندگی میں کبھی نہیں آئی, کیونکہ میرا رب جانتا ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں. یعنی وہ شجاعت, وہ استقامت جو امام چاہتے ہیں, وہ امام سے لوگ لے رہے ہیں. ہم اپنی زندگی میں کتنی لے رہے ہیں؟ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے ابھی تک امام کا ذکر کر؟ یعنی کائنات کا امام ہے. دیکھیں یہ مذاق بات نہیں ہے, ہم کائنات کو تو ایکسپلور ہی نہیں کر پائے ابھی تک, کائنات کتنی بڑی ہے. ہبل ٹیلیسکوپ نے جو کچھ بہت عرصے پہلے جو کیا تھا کہ پوری انسان کہ جو ہماری گلیکسی ہے, اس کے علاوہ بہت ساری گلیکسیاں, اس ملکی گلیکسی کے اندر ہماری گلیکسی جو ہے اس دیوار پر تصویر کھینچی جائے, تو وہ کہتے ہیں 10% ابھی تک ہم جو ہے وہ تصویر لے پائے ہیں. اس دیوار کے اندر اس 10% کو بھی اگر لگائیں تو صرف جو ایک نقطہ ہے وہ ہماری گلیکسی ہے. اس گلیکسی کے اندر سورج بھی ہے, چاند بھی ہے, اور بہت سارے دوسرے سیارے بھی ہیں, اور ہم بھی ہیں, دنیا بھی ہے. اسی نقطے کے اندر, دنیا کے اندر ہم لوگ بھی کہیں نہ کہیں ہیں. صرف 10% میں وہ نقطہ ہے اس جو ابھی تک کائنات ایکسپلور نہیں ہوئی ہے. 780 میل کی رفتار سے جو ہے وہ گلیکسی موو کر رہی ہے. کہاں سفر کر رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, کہاں تک جائے گی؟ جہاں تک جائے گی, جہاں تک ہمیں نہیں پتا, ان سب جگہوں کا امام ہے وہ. یعنی معرفت تبھی تو بڑھے گی کہ یہ ہے کون, یہ ہستی کون ہے. हम तो थोड़ी सी बात सुनते हैं और अजीब से हो जाते हैं, नहीं नहीं आप छोड़े हैं, जाबिर इब्ने जोफी छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौला के ज़माने के अंदर, मौला मदीना में, ये कुफा में, रावी कहता है कि मैं जाबिर इब्ने जोफी के साथ था मस्जिद कुफा, मैंने कहा मेरा दिल बड़ा चाह रहा है कि मैं अपने इमाम की ज़ियारत करूँ। जाबिर कहता है अच्छा आओ मैं तुम्हें ज़ियारत कराता हूँ, कहते ये कहता हो कूफा के शहर से बाहर निकले, कहता अपनी आंखें बंद करो और मेरा हाथ पे हाथ रखो, कहता मैंने वैसे ही किया, कहता थोड़ी देर में देखा तो मैंने कूचा बनी हाशिफ में अपने आप को पाया और मौला के घर के सामने खड़ा होकर मुझे उसने बोला कि जाओ जाओ इमाम की जाके ज़ियारत करगा। अब कहता मैं वहाँ बड़ा परेशान खड़ा था कि कहीं ये ख्वाब ना हो, तो अचानक से मैं सोच रहा था, जाबर ने मुझे एक कील दी, पत्थर दिया, बोला दरवाजे में ठोक दो, जब अगली दफ़ा हज पर आना तो देख लेना कि मैं इसी घर पर आया था। तो अब और उसको यकीन हो गया, खैर अंदर जाकर देखता है, जाके इमाम से जो है वो गुफ्तगू करता है। आयतुल्लाह मज़ाहिरी ने जाद बे नफ्स में इस वाक़े को नकल किया, कहते अंदर देखा, कहते बाद में इसने देखा कि जाबर जो है वो इमाम से कान में सरगोशियाँ कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है, जैसे एक कोई आशिक अपने माशूक से गुफ्तगू करता है। यानी ये इर्तबात इमामत और विलायत के साथ जब करता है तो फिर ऐसा शख्स हो जाता है जो कूफा से आँखें बंद करता है तो मदीना पहुँच जाता है। फिर वापस जो है वो उसने बोला आके देखे, खूब ये जाबिर इब्ने जोफी है छठे इमाम के दौर के अंदर है, खूब आए थोड़ा सा पीछे बल्कि इधर करीब करीब, आयतुल्ला बहजत जब पढ़ने गए करबला में नजफ में तो 4 साल करबला में रहे हैं, 14 साल की उम्र में गए, 18 साल तक करबला में रहे, उसके बाद नजफ के अंदर जो है वो पढ़ने गए, 4 साल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में रहे और इमाम हुसैन ने 28 तोहफे जो है वो इनायत किए। तो आयतुल्ला बुशहरी अपनी किताब के अंदर जो है वो किसी से वाक़या नकल करते हैं कि एक तालिब इल्म था नजफ़ के अंदर रहता था, उसके वालिद ज़ियारतों पर आए तो वो अपने वालिद को ज़ियारत से लेके करबला जाता है, करबला जाता है तो देखता है कि वहाँ पर इसको करबला पहुंचकर याद आता है कि आज जो है वो मंगल की रात है और मैं कई हफ्ते से जो मंगल की और बुध की रात है मैं मस्जिद सहला का जो है वो अमल कर रहा हूँ 40 दिन का 40 हफ्तों का, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, अब मैं वापस कैसे जाऊँ, वाले साहब भी साथ हैं ये वो। इसी शशुपंज में देखता है कि इमाम हुसैन के हरम के अंदर मुझे आयतुल्ला बहजत नज़र आते हैं, तो कहते हैं मैं उनके पास जाता हूँ, तो कहते हैं क्या परेशानी है, कहते हैं किबला मसला ये है कि मैंने जो है वो हफ्ता जो है वो वहाँ करना है मस्जिद सहला के अंदर, मैंने इबादत करनी है, अब मेरे साथ वाले साहब भी आ गए, मैं क्या करूँ, कहते जाओ वाले साहब को जहाँ ठहराया है मेहमान सराय में वहाँ छोड़ कर आओ। ये छोड़ कर आते हैं, कहते हैं आओ चलो, कहते हैं करबला से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो अचानक चंद कदम चलते हैं तो अगले कदम ये कूफा के बाहर खड़े हुए होते हैं, कूफा के बाहर खड़े होते हैं, कहते हैं जाओ जाके मस्जिद सहला में अमाल करो, कहते हैं मैं कहता हूँ, फिर वापस आते हैं तो मुझसे पूछते हैं वापस भी जाना है, कहते हैं जी किबला वापस भी जाना है क्योंकि वाले साहब तो वहीं करबला में, कहते हैं इसी तरह फिर जो है वो चंद कदम बढ़ाते हैं और पहुँच जाते हैं। वो जाबिर इब्ने जोफी था, ये आयतुल्ला बहजत, ये कहानियाँ नहीं है, हुसैन में आया कि ये कहानी है, कुरान आए कुरान, कुरान क्या कहता है, कुरान कहता है कि हज़रत सुलेमान ने क्या कहा था कि जो तख्त बल्कीस को लेकर आएगा जल्द से जल्द वही मेरा वसी, तो ऐसे में एक जिन खड़ा हुआ उसने मैं आधे दिन में लाऊंगा इसी ने मैंने था ना, तो वहाँ पर कुरान कहता है कि एक शख्स बैठा हुआ था कि जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, कुरान की यही अल्फाज हैं कि उसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था, उसने क्या कहा कि मैं पलक झपकते ही उसको ले आऊँगा, वो ले आया पलक झपकते ले आया। तो इसी आयत के ज़ेल में छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मौला इरशाद फरमाते हैं कि उसके पास जो किताब का इल्म था वो कतरा था और हम उस इल्म का दरिया हैं समंदर हैं। तो यानी जो भी अपने आप को समंदर से अटैच करेगा उसको अगर कतरा भी मिल गया तो वो आसिफ इब्ने बरखिया बन जाता है, वसी हज़रत सुलेमान। तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, हम यहीं फंस गए हैं, आसपास फंस गए हैं, इधर उधर फंस गए हैं, एक दूसरे की बातों में फंस गए हैं, चीज़ों में फंस गए हैं, उसने ये किया उसने ये किया, मैं मेरा वजूद जवाब दे है रोज़े महशर, मेरे वजूद ने जवाब देना है, जवाब लिया जाएगा, हमने तुम्हें वजूद दिया, हमने तुम्हें खल्क किया और तुम्हारी खिलकत के बाद तुम्हारे लिए पूरा इंतज़ाम भेज दिया और हमारे पास तो ज़्यादा सवाल होंगे कि हमने तुम्हें अहले बैत के घरानों में पैदा किया, तुम्हारे दिलों में विलायत अली इब्ने अबी तालिब को बचपन से करार दिया, मुहब्बे अहले बैत करार दिया, फिर भी तुम कहाँ खड़े हो, तुमने क्या किया ज़िंदगी के अंदर, ये सवालिया निशान है यार। हमारी ज़िंदगी में सवालिया निशान है। लेकिन जब तक हम इन अपने हदूदों को जो हमने ख़ुद बनाए हुए हैं इसको तोड़कर परवाज नहीं करेंगे, तब तक हम अपने वक्त के इमाम की नुसरत नहीं कर सकते। वक्त के इमाम की नुसरत बहुत मुहिम है, और उस नुसरत के लिए अपने आप को बहुत बुलंद करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जल्दी आगे जाना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये शब कदर की रात गनीमत है हमारे लिए, इस गनीमत में हम समेटें जो समेट सकते हैं। शब शहादत मौला कायनात है, जो चीज़ें तलब कर सकते हैं करें, कायनात इनके हाथों में है, कायनात को यही रोटेट करते हैं, कायनात को सॉल्व इन्होंने किया, सब कुछ इनके पास है। अभी एक साहब हमारे दोस्त ने सवाल किया कि अब ये मसला है कि हम जो अली मदद कहते हैं तो अब हम या अली से मांगते हैं या अल्लाह से मांग रहे हैं। लोग भी हम पे रिस्काल करते हैं कि भाई आप या अली मदद कहते रहते हो। तो बात ये है कि ये हमारे इमाम ने ख़ुद बताया है कि भाई मुझसे मांगो, मैं भी तुम्हें दूंगा। अब ये किसने कहा? खुद रसूल खुदा ने कहा है कि इमाम अली के पास सब कुछ है, इमाम अली तकसीम नारो जन्ना है, शाफी है, मैशर है, ये है, वो है, फलाना है, दिमाका है। तो हमें कोई और हस्ती नज़र नहीं आती, हम किसके पास जाए मांगने के लिए। तो बात यह है कि जब हम इनसे मांग रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने खुदा को खुदा ना खास्ता जो है वो डिलीट कर दिया ना। खुदा ही ने इनको ऐसा बनाया है कि हम मजबूर हैं इनसे मांगने पे। खुदा ने इनको ऐसा बना दिया है, खुदा ने इनको इख्तियार दिया है, खुदा ने इनको दिया है। सूरह लुकमान के अंदर जो कुरान में आयत है, आयतुल्ला मजाहिरी लिखते हैं कि इससे बड़ी आयत नहीं है फ़ज़ाइल अली इब्ने अबी तालिब के लिए, कि उसमें परवरदिगार कहता है कि तुम इस जितने भी दुनिया के अंदर दरख्त हैं उनको कलम बना दो, और जितने भी समंदर हैं उनको स्याही बना दो, और 7 दफ़ा ये काम करो तो भी तुम कलमतुल्लाह के फ़ज़ाइल नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। और रिवायात की रोशनी में कलमतुल्लाह और जहाँ ज़्यारत जब हम पढ़ते हैं जाते हैं नजफ के अंदर, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हमें आज की शब मौला जी इजाज़त दे कि हम नजफ में जाएं और आने वाले साल तक ज़्यारत कर सकें मौला की, उसमें जो मफातिल जना में ज़्यारतें लिखी हुई हैं शेख अब्बास कुम्मी ने, उसके अंदर हम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या कलमतुल्लाह। कलमा किसको कहते हैं? कलमा मायनी को कहते हैं, यानी हुसैन प्यासा है, ये कलमा मायने दे रहा है, मफहूम दे रहा है। कलमतुल्लाह कौन है? कलमतुल्लाह पूरी कायनात में नज़र डालें सिवाय अली इब्ने अबी तालिब के कोई और नहीं है, कोई और माने ही नहीं देता जो कलाम हो, परवरदिगार का कलमा हो। क्योंकि हर जगह आपको यही हस्ती नज़र आती है, चाहे दावत ज़ुल-अशीरा हो, चाहे शब हिजरत हो, चाहे फातह खैबर हो, चाहे खंदक हो, चाहे उहद हो, कोई जगह है, कोई भी जगह है सिवाय इस हस्ती के कोई और हस्ती नहीं है। और न सिर्फ अपने ज़माने के अंदर, रसूल खुदा के बाद भी, रसूल खुदा के चले जाने के बाद, अपने ज़ाहिरी वजूद के चले जाने के बाद भी इमाम अली का घराना है जिसने इस्लाम को जो है वो बचा कर रखा हुआ है, इस्लाम की बका के लिए अपने कोई जिंदान के अंदर है, कोई करबला में, कोई किसी जगह में, कोई किसी जगह में, और आज तक उनको सारे मानने वाले, सारे मानने वाले जो उनको मानने वाले भी हैं वो भी उसी की कीमत अदा कर रहे हैं। ये सब फ़ज़ाइल अली इब्ने अबी तालिब है, हम नहीं लिख सकते मौला के फ़ज़ाइल को, हम नहीं जमा कर सकते मौला के फ़ज़ाइल, ये तो हम ज़ाहिर है अपने तस्कीन के लिए, अपनी रूह की परवाज़ के लिए इमाम के फ़ज़ाइल को जो है वो लिखते हैं। तो हम इन फ़ज़ाइल के अंदर देखें कि हम कैसे अब्द बन सकते हैं। अगर हम ना परवाज़ कर पाएँ तो यकीन करें फिर मैं अपनी खिलकत को क्या जवाब दूंगा कि इतना बड़ा हमने तुम्हें इमाम दिया था मौला मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन, तुमने कितना अपनी ज़िंदगी में, कितने परसेंटेज तुमने इसको फॉलो किया। मगर हमारी ज़िंदगियों में यह है कि बस हम एक हद तक गुफ्तगू है और फिर खुदा ना खास्ता नहजो बलागा, कितने खुतबे हैं पढ़ने वालों ने, लिखने वालों ने, हमने नहीं, हम तो खैर हम तारीफ़ करेंगे तो बोलेंगे खुद ही तारीफ़ कर रहे हैं। आप तुझे देखें जिन्होंने दूसरों ने कहा कि इस तरह खुतबा खिलकत दुनिया मौला ने बयान किया, ऐसा लगता है कि मौला मौजूद हैं, खिलकत को देख रहे हैं और मौजूद हैं, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। क्योंकि हदीस कुदसी है कि मैं छुपा हुआ खजाना था, कुंतो कंजन मखफियन, मैंने चाहा कि मैंने नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खल किया, दुरूद अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर रसूल खुदा खुद फरमाते हैं कि मैं और अली एक ही नूर से खल्क हुए हैं, ये नूर हैं, कैसा नूर है। आज इंशाल्लाह तौफीक हो हम सबको कि हम जो है वो दुआए जुशन कबीर पढ़ सकें, कि हम परवरदिगार को तारीफ़ व तमजीद करते हैं कि तू कुल का कुल नूर है। अजीब जुमले हैं उसके भी, तू कुल का कुल नूर है, तू ऐसा नूर है जो कुल के नूर से पहले भी है, कुल के नूर के बाद का भी नूर है। यानी तू, यानी अजीब जुमले हैं, इंसान वहीं रुक जाए, कैसा नूर है। और मौला कायनात आप दुआएं देखें, मनाजात देखें, मौला तस्वीर खींच रहे हैं। मनाजात अमीरुल मोमिनीन जो शब कूफा के अमालों में से भी है और इंसान कभी भी पढ़ सकता है। यानी हम मौला के मानने वाले हैं हम, मैं खुद, मैंने कितनी दफ़ा अपनी ज़िंदगी में मनाजात अमीरुल मोमिनीन पढ़ी है, सबसे बड़ा तो ये सवाल है कि मैं अमीरुल मोमिनीन को मानता हूँ, मनाजात अमीरुल मोमिनीन मेरी ज़िंदगी में रातों में है ही नहीं। कितनी रातों में है, कितनी दफ़ा है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका यौमा ला यन्फ़ौ, कि मौला कहते हैं परवरदिगार मैं तुझसे उस दिन का सवाल करता हूँ कि जिस दिन कोई चीज़ नफ़ा नहीं देगी सिवाय कल्ब सलीम के, और उस दिन माएँ बहनें इंसान की, माएँ बहनें जो गिरिया कर रही होंगी वो इंसान को नहीं बचा पाएंगी। इंसान मुजरमों की तरह जो है वो अपने चेहरों से पहचाना जाएगा। यानी किस तरह आखरत को, फिर वहाँ मेरे मौला के आगे टून ही चेंज हो जाती है, मौला या मौला अंतल मौला अनल अब्द वहल यरमुल अब्दा इलल मौला, कि मौला मैं आप ए मेरे मौला, तू मेरा मौला है, मैं तेरा बंदा हूँ, मगर क्या तू अपने बंदे पर रहम नहीं करेगा जबकि तू मेरा मौला है। मौला या मौला अंतर राजिक अनल मरजूक वहल यरमुल मरजूक अल राजिक, कि मेरे मौला तू ही मेरा राजिक है, तू ही रिस्क देने वाला है, मगर क्या तू मरजूक पर, रिस्क लेने वाले पर रहम नहीं करेगा जबकि तू राजिक है। मौला या मौला अंतल खालिक अनल मखलूक, और आप देखें कि वो किस तरह मेरा मौला अपने आप को, अपने कमतर होने को, अपने हकीर होने को अपने रब के सामने बयान कर रहा है। तो यहाँ पर मुगालता नहीं है कि अगर हम मौला से मांगते हैं तो हम ना, हम मौला से मांगते हैं तो इसलिए मांगते हैं कि परवरदिगार ने मौला को अता किया हुआ है, और अगर हम परवरदिगार से ही मांगते हैं तो इनका वास्ता देकर मांगते हैं। तो कोई नहीं है कि हम मौला से ही मांगे, परवरदिगार से, परवरदिगार से कह इनके सदके में दे। इनका अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है वो खालिक ने इनको दे दिया है, दे दिया है। मगर ज़ियारत जामे में नहीं पढ़ते कि यही वो घराना है जो मादेन और रसाला है, अस्सलामु अलैका या अहल बैत नबुवा, यानी ये वो घराना है जहाँ पे नबुवत जो है वो इन्हीं घरानों के अंदर है, रसालत का जो मादन है, रसालत के जो ख़जाने हैं वो सब इन्हीं घरों के अंदर है। तो ये अब हमारे अपने ऊपर है कि इनके तो हम फ़ज़ाइल जितने बयान करें सारी रातें गुजर जाएंगी, फ़ज़ाइल इनके ख़त्म नहीं होते। फजीलत ये है कि मैं इनकी फजीलत से अपनी फजीलत में इजाफा करूँ, फजीलत ये है कि मैं अपनी फजीलत में जो है वो इजाफा करूँ, और वो कैसे करूँगा, वो तभी करूँगा कि जब मैं अपनी ज़िंदगी में मोती बनूँगा, अपनी ज़िंदगी के अंदर जो अपनी ज़िंदगी के अंदर कैसे हूँ। कि बहरहाल एक रिवायत पढ़कर आपकी ज़हमतें तमाम करता हूँ, शब शहादत भी है, अमाल भी करने हैं शब कदर के, कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम اللهم صل على محمد وآل محمد نے جو ہے وہ ہشام کو ایک روایت دی ہے، اور وہ روایت یہ کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں ان میں سے ایک نصیحت ہے، اور وہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے مایہ خیر ہو، عبرت ہو، کہ حضرت لقمان نے بھی یہی کہا کہ اپنے بیٹے کو کہ انت دنیا بحر عمیق فیہ غرق فیہا قد غرق فیہا عالم کثیر، کہ یہ دنیا ہے یہ ایک بہت گہرا سمندر ہے اور اس کے اندر ایک عالم کثیر یعنی کثیر تعداد جو ہے وہ غرق ہو گئی ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایسی ہے، ہم اس دنیا کے اندر جو ہیں وہ دنیا میں آپ کے سامنے لوگ کتنے غرق ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ اس غرق ہونے سے اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو وہ کہتے ہیں اپنے لیے ایک کشتی بناؤ۔ کشتی کس چیز کی ہو؟ کشتی تمہاری تقوی کی کشتی ہونی چاہیے، تقوی کی کشتی بناؤ اس سمندر پر چلنے کے لیے، اور اس کے جو بادبان ہوں، اس کی جو رسیاں ہوں وہ ایمان کی ہوں اور توکل کی ہوں، یعنی ایمان جو ہے وہ تمہارا بادباں ہو اور توکل کی تمہاری رسیاں ہوں، اور اس کشتی کا جو کپتان ہو وہ تمہاری عقل ہونی چاہیے جو تمہاری اس کشتی کو راستہ دکھائے۔ یعنی بغیر دلیل کے اپنی زندگیوں میں نہ چلو، سنی سنائی بات ہے، سن لیا ये कर लिया ना, अकलन अकल के साथ अपनी इस किश्ती को जो है वो आगे की तरफ बढ़ाओ। और इस किश्ती को जो तुमने लंगर डालना, किश्ती लंगर डालती है, हर जगह रोकती है, और वो इसका लंगर क्या है, वो सबर है। सबर को अपनी ज़िंदगी में रखो तो तुम्हारी किश्ती जो है वो सही जगह पर जाकर रुकेगी। तो हमें यही करना है, हमें अपनी ज़िंदगी में किश्ती को, तकवे की ज़रूरत है। माह मुबारक तकवे का महीना है, तरबियत का महीना है। लअल्लकुम तत्तकून, परवरदिगार कुरान में कहता है कि शायद तुम तकवा इख्तियार करो। रोज़ा इसलिए तुम पर फ़र्ज़ किया गया है, शायद तुम तकवा इख्तियार करो। तो ये तकवा इख्तियार करना है उसी महीने में, तो तकवे किश्ती बनाएं, बनाएं तकवे किश्ती। और इसमें जो है वो ईमान और तवक्कुल को जो है वो इस किश्ती को चलाने का सहारा, और अकल जो है वो इसका कुतुब नुमा हो, अकल जो है वो इसको रास्ता दिखाती हो, अकल इसका कप्तान हो, और सबर हमारी ज़िंदगी के अंदर। इन्नल्लाहा मा साबरीन, यानी हमारे लिए पूरा पूरा पैकेज जो है वो डिज़ाइन किया हुआ है। हम दूर हैं, हम दूर हैं, इसलिए हम परेशान हैं, इसलिए निगरान है। फिर आज हम फिर दुनिया के फ़लसफ़े पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं, फ्रॉइड को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं हमारी ज़िंदगी के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, मसाइल तभी हल होंगी कि जब इन किश्तियों को हम सॉल्व करें। बहरहाल एक चंद दो शेर हैं, और वो क्योंकि इसी किश्ती का जब मैं रिवायत कर रहा था तो उसी वक्त मुझे बहरहाल नज़र आए, तो उसमें भी किश्ती का जिक्र है, लेकिन वो मौला की शान के अंदर हैं। बहरहाल शायर है, हर शायर का एक अलग कैफियत है। उसने लिखा है, उसने ये लिखा है कि दर्द दिल की मेरी दवा तुम हो। यानी आज की शब वैसे भी शब शहादत भी है, शब कदर भी है, तो हम एक दूसरी कैफियत से भी तो मौला के पास जाएं कि दर्द दिल की मेरी दवा तुम ही तो हो, मेरी किश्ती के ना खुदा तुम ही तो हो। यानी मेरी जो किश्ती इस टाइम इस तलातुम के अंदर ज़िंदगी के जो गोते मार रही है, अजीब फितने का दौर है, अजीब मुश्किलात हैं, और ये अजीब बड़ी बड़ी से जो वेव उठ रही है मेरी ज़िंदगी में, कहीं मेरी किश्ती को डुबा दें, तो आपने तो हज़रत नूह की किश्ती को बचाया है मेरे मौला, वो सफ़ीना तो नूह को आपने बचाया है, तो मेरी किश्ती तो मौला बहुत छोटी सी है। तो दर्द दिल की दवा तुम ही तो हो, मेरी किश्ती के ना खुदा तुम ही तो हो। यूँ ना तोड़ो मेरी उम्मीद दिल, मेरी उम्मीदों का आसरा तुम ही तो हो। और आखिर में कहता है, इस कर्म का भी कुछ ठिकाना है, इस कर्म का भी कुछ ठिकाना है, मैं तो तुम्हारा हूँ और मुझसे खफा तुम ही तो हो। कि मौला आप मुझसे खफा हैं, मैं तो आप ही का हूँ, मुझसे आप क्यों खफा होते हैं, और मैं आया इसलिए हूँ कि मैं आपको मनाऊँ। मौला को मनाएं कि हमने मौला के साथ उस तरह करना चाहिए, नहीं किया। लोगों ने इमाम को छोड़ दिया था, इमाम के लिए जो तन्हाई थी। हम किस लिए रोते हैं, हम उस ज़रबत पर रोते हैं जो मौला को लगी, असल वो मौला के नहीं था। वो तो जब ज़रबत लगी तो मौला ने कहा फुस्तो रब्बिल काबा, मैं रब्बे काबा की कसम आज कामयाब हो गया हूँ। यानी मौला के लिए ये कोई अफसोस की बात नहीं थी, मौला के लिए अफसोस की बात ये थी कि मेरे मौला को तन्हा छोड़ दिया था लोगों ने, तन्हा छोड़ दिया था, तन्हाई जो थी मेरे मौला की। मेरे मौला आते हैं और बीबी रसूल खुदा की रहलत के बाद मशहूर है कि कहा कि हर जगह गया, दरवाज़ा खटखटाया बीबी ने जाकर मौला की विलायत के लिए, मगर किसी ने जवाब नहीं दिया। तो बीबी ने कहा कि मौला मेरे लिए बहुत गम की बात है, मेरे लिए बहुत उसकी बात है कि लोग सलाम का जवाब नहीं देते। नहीं, सलाम करना तो दूर की बात, सलाम का जवाब नहीं देते मौला को। मौला कायनात है, कायनात है कि मन कुंतो मौला फहाजा अलियुन मौला, और लहमों का लम्ही, दमों का दमी, यानी मेरे बदन का खून, मेरा गोश्त, मेरा पो, यानी सब कुछ अली तुम हो। और उस अली के साथ उम्मत ने क्या किया, तनहा छोड़। असल ये था गम इमाम के लिए कि इमाम को तनहा छोड़ दिया, और आज भी अली को और अली के फर्जंद को हमने तनहा छोड़ा हुआ है। कहाँ है अली का फर्जंद आज, कहाँ है आज? दुश्मन या अली मदद कहने से नहीं घबराता, आज दुश्मन या मेहदी अदरकनी से घबराता है, क्योंकि वहाँ दुश्मन को पता चल जाता है कि यह सही अपने वक्त के हाजिर इमाम को पहचान गया है। मसला सारा यही है। हाँ अजीज़ान मोहतरम, मैं अभी मार्च के अंदर करबला गया, और इस वाक्य को मैं कई दफ़ा जो है वो पढ़ चुका हूँ जब से मैं आया हूँ। इस दो तीन महीने के अंदर वाक़ ऐसा पेश आया कि जो ख़ुद मेरे लिए बहुत बड़ा जो था वो इम्तिहान था, खुद मुझे एक बहुत बड़ा मौला ने इम्तिहान के अंदर जो है वो कटेरे में डाल दिया और चेक किया, क्योंकि रोज़े आखिरुज़्ज़मान है तो रीज़िश हो रही है। रीज़िश कहते हैं छाननी जो होती है, वो छानती है कि जो खालिस होता है वो ऊपर रह जाता है, बाकी रेत जो है वो निकल जाती है और खालिस सोना या हीरे जवाहरात बाकी रह जाते हैं। तो आज का जो ज़माना है वो छान रहा है कि जो रीज़िश है, जो खालिस नहीं है, वो गिर रहे हैं और जो हैं वो बाकी हैं, वो बाकी रह जाएंगे। इसी में मैं करबला गया, मेरा बेटा 8, 8.5, 7 साल का है, वो रात को ज़िद करके जो है वो अपने मामू के साथ ज़ियारत पे चला गया। मना किया कि रात है, कहता नहीं मैं आप लोग सब रात हरम में गुजारते तो मैं भी एक रात हरम में गुजारूंगा। गए हज़रत अब्बास के हरम की ज़ियारत करते हुए मौला के कब्र तक गए। फजर का वक्त मैं अभी अपने कमरे में सो रहा था, जैसी अजान हुई मैं उठना था नमाज के लिए, तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो आए और उनके हाथ में मेरे बच्चे के जूते हैं, बच्चा नहीं है। कह रहे हैं कि वो वापस आया। मैंने कहा नहीं। कहते हैं पता नहीं एक घंटा हो गया मैं हरम में ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा हरम में होगा, कहाँ जाएगा, हरम से कहाँ जाएगा, उतना बहुत बड़ा हरम थोड़ी है। तो बहरहाल वो परेशान, कहता मैं वो वापस भागे उसी पैरों उल्टे। और मैंने कहा चलो फजर का वक्त हो गया, पहले खुदा की बारगाह में 2 रकात पढ़ के सजदा कर लो, बच्चे ने तो मिलना मिल ही जाएगा, उसने कहाँ जाना है। बहरहाल वहाँ से मैं गया हज़रत अब्बास के हरम में, गया होता होता बैनुल हरमैन, हज़रत इमाम हुसैन के हरम, खुद्दाम से गुफ्तगू, उनका यहाँ जाएँ वहाँ जाएँ। खुलासा बड़ा हरम में ढूंढा, बच्चा नहीं मिला। फिर बाहर निकले, ऐलानात में जगह गए, वहाँ गए, वहाँ नहीं मिला। फिर बैनुल हरमैन, फिर काफिला सालार, फिर कुछ अरबी दोस्त वो आए, फिर हरम के अंदर ढूंढा हर जगह। यानी हरम आपने देखा है कॉरिडोर नया बन गया है, नीचे भी बन गया, ऊपर भी बन गया है, हर जगह जहाँ पर उम्मीद नहीं भी थी उस जगह भी, हर दरवाजे के ऊपर, हर खुद्दाम के ऊपर जाकर देखा। हरम के कोने कोने जहाँ मैं आज तक इतने साल से जा रहा हूँ मैं वहाँ नहीं गया था, वहाँ तक जाकर जो है वो मैंने उसको ढूंढा, मगर बच्चा नहीं मिला। मैंने मौला को जरी के सामने खड़ा कहा मौला मैं ये तो जानता हूँ कि बच्चा कहाँ है, आप जानते हैं और आपके पास कायनात आपके आगे छुपी भी थोड़ी है, ये मेरा यकीन है कि बच्चा आपके पास है लेकिन मैं नहीं जानता। इसी अरसे के अंदर मैं थोड़ी देर और ढूंढा तो मुझे ऐसा लगा कि मौला की जरी के अंदर से हवा का झोंका आया, क्योंकि इंसान खुद जब चीज़ों को लम्स करता है, एक तो होता है सुनी, खुद जब इंसान देखता है तो वहाँ पर, तो जो हवा का झोंका आया बिल्कुल जरी के सामने से, उसमें से लगा कि मुझे ये सदा आई कि कहा कि अभी चंद घंटे हुए हैं तुम्हारा बच्चा खो गया और तुम ये भी जानते हो कि बच्चा हमारे पास है। ये मेरे दिल के अंदर की यकीन था, ऐसा नहीं था कि मैं उसमें था शक में था कि बच्चा नहीं, मुझे इतना यकीन था कैसे हो सका। मौला कायनात के आगे जहाँ मलाइका उतर रहे हों, उतर चढ़ रहे हैं मलाइका, 4,500 मलाइका गर्द व गुबार में हर वक्त रिवायत है कि गर्दिश कर रहे हों, ये मेरा यकीन था कि ये सब कुछ यकीन है। तो मौला के उस पर मौला ने कहा कि ये तुम जानते हो कि तुम्हारा बच्चा हमारे पास है, मगर उसके बावजूद तुमने कुछ घंटों में हरम का एक एक कोना ढूंढ लिया। आज 1140 साल हो गए, हमारा बच्चा नहीं आया, तुमने एक घंटा अपनी जिंदगी में, एक घंटा अपनी जिंदगी में ढूंढा, 5 मिनट अपनी निगाहों को मुस्तरब किया कि इमाम जमाना 5 मिनट, मौला क्यों नहीं आए हैं, मौला मैं कूफा में देख रहा हूं आप मुझे नजर नहीं आते, मौला मैं नजफ में हरम के अंदर खड़ा हूं, मौला एक झलक दिखा दे मुझे अपनी, मौला जमकरान के अंदर मैं आया हूं, मुझे एक झलक दिखा दे। 5 मिनट ढूंढा अपने मेरे फर्जंद को, नहीं मैं वहीं गिर गया, वहीं टूट गया। मैंने हाथ जोड़ लिए कि मैं हार मान गया, मैं तैयार नहीं हूं, मैं अलजल कहता हूं मैं तैयार नहीं हूं। शबे कदर तनजुलुल मलाइका तो वरू, मलाइका नाजिल होते हैं, इसलिए सलामती है, इमाम ज़माना की दुआ पढ़ना बहुत मुहिम है, इमाम ज़माना से राबता कायम करना आज की शब बहुत मुहिम है। तभी तो आयतुल्ला जवादी आमली कहते हैं कि तुम आज की रात अपने आप को वो बनाओ जो 1,000 लोगों को रोज़े मैशर निजात देगा। वो कब बनेंगे, वो तब बनेंगे जब मैं अपने वक्त के इमाम से अपने आप को मुत्तसिल करूँगा, अली ज़मान से, कायनात के इमाम से मुत्तसिल करूँगा, तो ही तो मेरे मौला कायनात मुझसे राज़ी होंगे। मौला कहेंगे उस वक्त मुझे सब ने तन्हा छोड़ दिया था, आज मेरे फर्जंद को भी तन्हा छोड़ा हुआ है लोगों ने, अपने लिए परेशान है। अपने लिए परेशान है। एक बच्चे जवान सा है, मस्जिद जमकरान है, बस आपकी जहमत तमाम करता हूँ, वक्त तोलानी हो गया। जमकरान के अंदर एक जवान है, उस्ताद हमारे थे, उन्होंने देखा कि उसकी कैफियत थोड़ी सी, उससे पूछा क्या हाल है। कहा मेरी इमाम जमाना से मस्जिद में मुलाकात हुई। तो कहा था फिर तुमने क्या कहा मौला से। मैंने मौला से, मौला इतने सारे लोग, मस्जिद भरी हुई है, आप तो 313 का इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ तो हज़ारों की तादाद में लोग हैं, तो आप आ क्यों नहीं जाते। तो कहते हैं वहाँ मुझे मौला ने कहा कि जितने भी लोग आए हैं ये मेरे लिए नहीं आए, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को औलाद चाहिए, किसी को काम चाहिए, मेरे लिए कोई नहीं आया। हम देखें कि हम ज्यारतों पे जाते हैं, कोई एक ज्यारत, मैं हमेशा वहाँ पे भी जब भी तौफीक होती है मजलिस की, मैं कहता हूँ कि एक ज्यारत ऐसी करें, जाकर मौला से कहें कि मौला मैं सिर्फ आपके लिए आया हूँ, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। तो आज की शब हम क्या मांगेंगे, क्या इससे बड़ी कोई बात है कि हम अपने वक्त के इमाम की तन्हाई को दूर कर सकें। तो यही है कि हम सही अली इब्ने अबी तालिब के मानने वाले हों, सही बंदे हों, सही आबिद बने, ताकि मौला वहाँ तक पहुँचे। वही बात बाहरुल अनवार की रिवायत है और मसाइब के चंद जुमले। रिवायत में है कि यमन के अंदर जब मौला ने अपनी हुकूमत आई, तो मौला ने यमन के अंदर से जो वहाँ पे वाली था मुंतखब, उसको कहा कि तुम सही हो, अच्छे हो, तुम्हें हम मुंतखब करते हैं, तुम हमारी हुकूमत के अंदर भी रहो। उसके अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मौला का चाहने वाला था, तो उसने कहा कि मौला, तो मौला ने कहा कि तुम लोगों से मेरी बैत लो और उनमें से 10 लोगों को जो है वो मेरे पास भेजो। तो उसने ऐसे ही किया। उन लोगों की खूबियाँ क्या होनी चाहिए, मौला से पूछा कि मौला कैसे 10 लोगों। तो मौला ने कहा कि वो जितने भी हों, वो जो साहिब नज़र हों, आकिल हों, मुतमईन हों यानी इत्मीनान कल पर हों, शुजा हों, और सारी खूब जो बेहतरीन सिफात हो सकती हैं। खैर उसने जमा किया, उसने 100 लोगों को जमा किया, उसमें से फिर 70, फिर 70 में से 30, फिर आखिर में कम करते करते 10 लोग बच गए। उन 10 लोगों को जो है वो फिर मौला के पास भेज दिया गया। जब उस 10 लोगों में मौला के पास आए, तो उसमें से एक जो उनमें से सबसे बेहतर था, वो खड़ा हुआ और उसने कुछ कलेमात कहे मौला से। कलेमात क्या हैं? अस्सलाम अलैका अय्युल इमामुल आदिल वल बद्रु तमाम वल लैसल हमाम वल बतलुर रज़काम, यानी मौला की सिफात, मौला की तारीफ़ें करता गया करता गया। अशहदु अन्ना का अमीरुल मोमिनीन सिदकन व हक्कन व अन्ना का वसी रसूलुल्लाह व खलीफा मिन बादही व वारिसु इल्मही लानल्लाहु मिन जहादा हक्का व मकामका, यानी मौला की वसायत का भी शहादत देता है और मौला के दुश्मनों पर लानत भी भेजता है। इतनी गुफ्तगू की तो मौला ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? तो आगे से कहता है कि मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। अजीब तारीख, अजीब वर्क है तारीख के, इंसान हिल जाता है। तो मौला ने पूछा व अबना मिन, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम किसकी औलाद में से हो? तो कहता है मैं मुलजिम मुरादी का बेटा हूँ। यानी एक शख्स 100 लोगों में से इंतखाब होता है, मौला के पास आता है, उसकी सिफात हैं, उसकी सारी खूबियाँ हैं, उसकी ये हैं, मौला की तारीफ़ करता है, तमजीद करता है, और फिर मौला पूछते हैं कि तुम को? तो फिर मौला कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय अज़ीम। ये सब कहता है तो वो परेशान हो जाता है, यानी क्या मेरे फैमिली से कोई परेशान है? तो फिर मौला उससे पूछते हैं कि तुम मुरादी ख़ानदान से? कहता हैं, फिर मौला जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हैं। तो वो ये कहता है कि आप मौत की बातें क्यों कर रहे हैं मेरे सामने? तो मौला कहते हैं कि तुम मेरे कातिल बनोगे। वो कहता है मौला या अली, खुदा की कसम, मैंने इस आलम में जितना मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता, यानी पूरे कायनात में मैं सबसे ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं कैसे आपको जो है वो कत्ल करूँगा? कहते हैं नहीं, इसरार ना करो इस बात पर, तुम ही मेरे कातिल हो। तो कहता है अगर मैं आपका कातिल हूँ तो आप मुझे मार दें। कहता है नहीं, मैं तुम्हें कैसे मारूं जिस चीज गुनाह का तुम अभी मुर्तखिब नहीं हुए, मैं तुम्हें कैसे मारूं? और फिर यही होता है कि मौला जो है वो उसको, बहरहाल बहुत सारे, एक दफ़ा बीमार होता है, कोई भी उसके पास नहीं जाता, मौला ही उसका ख्याल रखते हैं, सारे काम करते हैं। तारीख सिर्फ ये कहती है कि शख्स नहीं पता होता, और फिर ये जंगों में मौला के साथ है, जमल में मौला के साथ है, सफ़ैन में मौला के साथ है, नहरवान के बाद घूमा है। यानी इंसान के जिसका तमजीद और तशक्कुर मौलाए कायनात हों, वही आकर मौला के सर को जो है वो तन से जुदा करने के लिए कोशिश। यानी इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ये जो बसीरत है वो यही है कि कहाँ था जमल में और फिर नहरवान में कहाँ आ गया, और फिर वहाँ से निकला और मस्जिद कूफा के अंदर कहाँ आ गया। इसी को बसीरत कहते हैं। हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर यही देखें कि हमें नहीं पता कि हम आखिरी लम्हात में कहाँ होंगे। बहरहाल आपकी ज़हमत तमाम, खुदा हमारी इस इबादत को कबूल करे। शबे शहादत है और वाकई बहुत सख्त रात है अहले बैत के लिए, क्योंकि अहले बैत यतीम हो रहे हैं। देखें, जब बीबी चली गई दुनिया से तो बहुत सदमा हुआ। मौला इमाम हसन छोटे थे, बहुत सख्त था माँ के बग़ैर, लेकिन फिर भी बाप तो था सर के ऊपर। लेकिन अब बाप भी जा रहा है, और बाप सिर्फ अहले बैत का नहीं, पूरे यतीम के कूफा वालों का बाप जा रहा है। सारे यतीम अब असल में यतीम होते हैं। आज शब जो है वो तन्हा कर रही, इसलिए आसमान से निदा हुई, तहद्दमत इला अरकान खुदा, यानी खुदा का सुतून, खुदा की हिदायत का सुतून जो है वो गिर रहा है। कुतला अली जिब्ने अली मुर्तज़ा, अली जिब्ने अली मुर्तज़ा, अली मुर्तज़ा कत्ल हो गए। कहते हैं जब वार लगा तो मौला को जब उठाया, अजीब शोर और गूगा है, तो मौला साल में तसल्ली दे रहे हैं, मौला हसन को तसल्ली दे रहे हैं, कह रहे हैं कोई मसला नहीं है, ठीक है, मुझे घर ले जाओ, जहाँ पर मैं इबादत करता हूँ घर में, मुझे उस जगह बिस्तर लगाया गया। मौला इमाम हुसैन भी गिरिया करते हैं तो उनको भी सब्र करते हैं, उनको नसीहत करते हैं, कहते हैं खामोश हो जाओ। लेकिन जैसे ही बेटियाँ आती हैं, हज़रत ज़ैनब आती हैं, उम्मे कुलसूम आते हैं, बाप के इस बदन के पास आती हैं, गिरिया शुरू कर देती हैं, तो वहाँ पर मेरे मौला ने तारीख़ में लिखा है कि मौला ने उनको सब्र की तलकीन नहीं की, बगैर ख़ुद भी फूट फूट कर जो है वो रोना शुरू कर दिया। मैं कहूँगा या अमीरुल मोमिनीन, बेटों के मामले में तो आप सब्र की तलकीन करते हैं, लेकिन बेटी के मामले में आपसे रोना बर्दाश्त नहीं हुआ। मौला यहाँ पर तो बेटियाँ आपके घर के अंदर चादरों के अंदर हैं, हाँ हाँ यही बीबी ज़ैनब को आए करबला के अंदर देखें कितने सितम हैं, चादरें छिन गई हैं, सरों पर नेजों के निशा हैं, दामनों में आग लगी है, खेमों में जल रहे हैं, हाथों में रस्सियां हैं, ये कितनी मुश्किल है कि पूरा खानदान लुट चुका है और एक शहर से दूसरे शहर। हाँ मौला, जब ये आपका अहले बैत का घराना आपकी हुकूमत के जमाने में जब मदीना से कूफा पहुंचा था, तो आपने, वो दिन था जब ये कारवां पहुंचा, तो आपने रुकवा दिया कि जब रात की तारीकी हो तो अहले बैत को शहर में दाखिल करना। हाँ मेरे मौला, मगर आज आए करबला, कूफा के अंदर निजाम उल्टा हो गया है, रात को ये कारवां पहुंचा है, तो उमर इब्ने साद ने कहा कि रोक दो दरवाजों पर, इनको दिन की रोशनी में लेकर आना ताकि लोग इनको देख सके, इन पर पत्थर बरसा सके। हाँ मौला, उस वक्त तो आपसे जरा सा गिरिया बर्दाश्त नहीं होता था, आए देखे करबला के अंदर कितना गिरिया है। हाँ अजीजाने मोहतरम, आज की शब बहुत खतरनाक है, अहले बैत के ऊपर बहुत सख्त है, एक बाप के ऊपर आखिरी अय्याम है। मौला वसीयतें करते हैं सारे खानदान के बच्चों को, अपने सारे फर्जंदों का हाथ जो है वो इमाम हसन के हाथ में देते हैं, मगर ऐसे में देखते हैं हजरत अब्बास का हाथ इमाम हसन के हाथ में नहीं दिया, तो मौला थोड़े परेशान हुए, अपनी माँ को जाकर कहते हैं वालदा, बाबा ने मेरे हाथ को मौला इमाम हसन के हाथ में नहीं दिया। तो भी उम्मुल बनीन आती हैं, कहती हैं क्या मेरे बेटे से कोई खता हो गई? कहा नहीं, अब्बास को बुलाओ, अब्बास का हाथ पकड़ा, हुसैन को बुलाओ, हुसैन के हाथ में देखा, अब्बास तुम हुसैन के लिए बनाए गए हो, तुमने हुसैन का साथ देना है। हाँ मौला, आपकी इस वसीयत पर आपके बेटे ने बहुत सर सख्त अमल किया है, आखिरी लम्हों तक, जबकि हाथों में पानी भी ले लिया لیا تھا مگر اپنے لبوں تک پانی کو نہ پہنچایا, کیونکہ ارباب پیاسا ہے. اگر ارباب پیاسا ہے تو یہ غلام کیسے پانی پی سکتا ہے؟ ہاں عزیزان محترم, یہ وقت بھی گزرا, مولا اس دنیا سے رخصت ہو گئے. گھر میں رونا ہے, گریا ہے, باہر کوفہ کے بچوں میں گریا ہے. مولا کو غسل کفن دیا گیا, مولا کے بدن مبارک کو لے جایا گیا. مولا کی وصیت تھی کہ ایک سفر تک جا کر میرے جنازے کو چھوڑ دینا, یہ خود بخود آگے سے چلتا ہوا ایک جگہ پر پہنچ جائے گا. مولا کو دفنا دیا. بس مصائب کے چند جملے سنتے جائیے. اب امام حسن جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک بوڑھا شہر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, نابینا بھی ہے, ایک عجیب سی گفتگو کرتا ہے, غریب کی حالت میں ہے. پوچھیں کیا ہوا؟ کہا کہ 3 دن ہو گئے, ایک شخص آتا تھا, مجھے کھانا بھی کھلاتا تھا, میرے ساتھ اپنی حال احوال کی باتیں بھی کرتا تھا, مگر 3 دن ہو گئے ہیں وہ کوئی نہیں آ رہا. کہا کہ وہ کون شخص تھا, اس کا نام کیا تھا؟ کہا مجھے تو نظر نہیں آتا اس کا نام کیا تھا, ہاں مگر جب میرے پاس آ کر بیٹھتا تھا تو کہتا تھا کہ میں بہت مظلوم ہوں, میں بہت اکیلا ہوں, میں بہت تنہا ہوں. تو وہاں پر مولا کہتے ہیں اے مرد, ارے وہ کائنات کا امام تھا, وہ میرے بابا تھے اور میں انہی کو دفنا کر آ رہا ہوں. پروردگارا مولا کائنات کے صدقے میں ہماری اس عبادت کو قبول اور مقبول فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما, ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما, ہمیں صحیح طرح بندگی اور عبودیت کا اور اپنے عبد بننے کی توفیق عطا فرما, ہمیں مولا کائنات کے اقوال پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار آج کی شب جیسا تو چاہتا ہے, جس سے تو راضی ہے ہمیں تو ویسا بنا دے. پروردگار آج کی شب شب قدر ہے, پروردگار ہمیں اس کو در کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے ایک ایک لمحے کو عبادت میں شمار فرما. آنے والے سال میں ہمارے لیے جو سب سے زیادہ مہم ہے وہ ظہور امام ہے. پروردگار ہمیں اس آنے والے سال میں ہمیں ظہور امام کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما. آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر تمام مومنین مومنات محرومین خائل خانہ کے محرومین تمام شہداء کی روح کو پڑھ کر اور خاص طور پر استاد سپت جعفر کی روح کو پڑھ کر, بسم اللہ الرحمن الرحیم.